الطلاق مرتان، یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، یا تو پھر اچھائی سے روکنا یا عمدگی سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر دینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آ جائیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو، جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکامات کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 13، اس کا عنوان ہے طلاق کے مسائل۔ اس میں ہم نے طلاق کے بارے میں 5 باتیں پڑھی۔ پہلی بات ہے کہ وہ طلاق جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے وہ 2 ہیں، 2 دفعہ کے بعد جب تیسری دفعہ وہ طلاق کا لفظ بول دے تو رجوع کا اختیار ختم۔ دوسری بات ہم نے پڑھی کہ مرد رجوع کر سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے؟ ستانے کا ارادہ نہ ہو۔ تیسری بات ہم نے پڑھی کہ رخصت کرتے وقت یعنی طلاق کی صورت میں مرد وہ تمام تحفے تحائف واپس نہیں لے گا جو اس کو دیے تھے۔ چوتھی بات ہم نے خلع کی پڑھی۔ خلع کیا ہوتا ہے؟ عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ۔ یاد رکھیے کہ عورت طلاق دے نہیں سکتی لیکن طلاق لے سکتی ہے، اس کو خلع کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر مرد ویسے نہ دے تو عورت اپنی طرف سے کچھ معاوضہ دے سکتی ہے، مثلا حق مہر چھوڑ سکتی ہے جو اس کا تھا، بعض حالات میں اس سے بڑھ کے بھی دے سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ جب کوئی عورت خلع کا مطالبہ کر لے تو مرد کو چاہیے کہ اس کو طلاق دے دے۔ اگر مرد نہیں دیتا اور پھر اس کے بعد عورت کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ عدالت سے جا کے پھر لے گی۔ اب دیکھیے کہ اسلام کتنا نیوٹرل ہے نا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک رخصتی کے وقت میں بچیوں کو فقرہ دکھایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا۔ غیر اسلامی نقطہ ہے۔ شرابی پلے پڑ گیا، کبابی پڑ گیا، زانی پڑ گیا، بے دین پڑ گیا، بچی صرف اس جملے کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں پاتی۔ حالانکہ اسلام نے جیسے مرد کو اختیار دیا ایسے ہی عورت کو بھی اختیار دیا۔ پانچویں چیز ہم نے ادھر پڑھی حلالہ کی۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد کسی عورت کو اس کے پہلے شوہر سے جائز کرنے کے لیے کسی دوسرے سے نکاح کروانا، اور زبردستی پھر طلاق لے کے پہلے مرد سے نکاح کروانا، تو اسلام میں حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کرانے والے کو کرائے کا سانڈ کہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک زنا کی بدترین قسم ہے جو دیندار کرواتے ہیں۔ ایک زنا وہ ہوتا ہے جو دنیا والے کرتے ہیں، ایک زنا وہ ہے جو دین کے نام پہ ہوتا ہے، اور حلالہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کو، اپنی آیتوں کو کھیل تماشا نہ بناؤ کہہ کے کیا بتا دیا؟ کہ یہ دین تم پہ ایک نعمت ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی مرضی سے اس کو بدلنے لگ گیا تو پھر بات جو ہے وہ بہت دور جائے گی۔ ہم نے کیا عمل کی بات لی اس میں؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلامی نظام حیات دی ہے اس سے محبت کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں عورت کے حقوق کا تحفظ ہے نا۔ حلالے سے بچایا گیا تو عورت پہ ظلم سے بچایا گیا، ورنہ ایک عورت پہلے ایک شوہر سے پسے، پھر دوسری جگہ شادی کرے، پھر طلاق لے، عورت پہ ظلم ہے۔ ایلا کی اجازت 4 ماہ تک اس کی مدت کرتی تو عورت پہ ہے، आप देखिए कि अगर यानी औरत को खुला लेने की इजाजत दी, ये तो सारा कुछ औरत के हक में हो रहा है। तो हमने सच्चे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें इतने हकूक दिए, और इसे आगे ही भी चाहिए। बाज़ लोग इन मसलों को नहीं जानते। इसके लिए यह है कि आज के जो पारे की बुक है हमारी, वो ये है शरई तलाक, आपके स्टडी पैक में मौजूद होगी इंशाल्लाह। इसको पढ़िए, क्योंकि इस मुख्तसर वक्त में बावजूद कोशिश के भी आप देखिए कि हम वक्त से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यह है कि इस मजीद इस पे बात बाद में, अगर आप चाहें तो इस किताब का मुतालिया करें या फिर कोई और भी किताब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यह है कि ये मसाइल बाकी सबके जानने के हैं। चलिए रुकू नंबर 14 आयत नंबर 232। वइज़ा तल्लक्तुम निसा अफबलग्न अजलहुन फला तअदुलूहुन अन यनकिहन अज़वाजहुन। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो इन्हें इनके खाविंदों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हों। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़्यामत के दिन पर यकीन हो और ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। वल वालिदातु युर्दीन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो दस्तूर के मुताबिक हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इसके बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इस जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों कौन यानी माँ और बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वो इनके हवाले कर दो, और अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है। वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़्वाजा। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म हो कर लें तो अच्छाई के साथ जो वो अपने साथ करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन और किनायतन इन औरतों से निकाह के बारे में कहो या अपने दिल में छुपा रखो, छुपा कर इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर इनको याद करोगे, लेकिन तुम इनसे पोशीदा वादे न कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्दे निकाह जब तक के इद्दत ख़त्म न हो जाए पुख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है, तुम इससे खौफ खाते रहा करो, और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हिल्म वाला है। ये था रुकू नंबर 14। इसका उन्वान है ख़ानदानी निज़ाम की इस्लाह के अहकामात। ख़ानदानी निज़ाम की इस्लाह के अहकामात, हमने इसमें 2 चीज़ों पे बात की। पहले इस बात पे कि जब औरत की इद्दत ख़त्म हो जाए और औरत अपने पहले शौहर से निकाह करना चाहे तो घर वालों को रुकावट नहीं बनना चाहिए। मैं इस बात की अहमियत की वजह से थोड़ा सा इसको खोल के रखना चाहूँगी आपके सामने, हालांकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सारी बहनें हो सकता है कि इसके बाद उनको मौका ना मिल सके इस बात को सुनने का। तो वो बात क्या है, इसको शरीयत में कहते हैं तलाक़े हसना। असल मसनून तलाक देने का तरीका क्या है कि मर्द अगर पहले से सोच समझ के पूरी सारी वो कोशिशें जो आगे सूरत निसा में हम पढ़ेंगे 5वें पारे में, पूरे दिल से जब सोच भी लेता है कि मुझे तलाक देनी है और अब कोई बात ही नहीं जिससे हम जमा हो सकें, कोई कदर मुश्तरक नहीं, तो बीवी के हैज से पाक होने का इंतज़ार करेगा, पाक होगी उसके बाद मर्द कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उस तरह कहने को चाहे वो 10 दफ़ा कह दे या 1 दफ़ा कह दे, वो एक ही बार का कहना कहलाया जाएगा, और उसके बाद फिर पूरा महीना वो औरत उसी के घर में रहेगी, ज़ेब-ओ-ज़ीनत करेगी, उसके ख्याल करेगी ज़रूरियात का, کوئی شخص اس کو متعلقہ نہیں کہہ سکتا. اس دوران اگر مرد فوت بھی ہو جاتا ہے تو بیوی اس کا ورثہ پائے گی. اس کے دوران مرد چاہے تو اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے رجوع کر لے, جو ہی وہ رجوع کر لے گا وہ طلاق ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر رجوع کے بعد دوبارہ زندگی میں کہیں اگر دوبارہ اس نے طلاق کا لفظ بولا تو یہ پچھلی ایک طلاق پھر کھڑی ہو جائے گی اور وہ دوبارہ دوسری مل کے دو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بہرحال رجوع کو اگر چھوڑ دیں, اگلے مہینے عورت جب پیریڈ سے پاک ہوگی طہر کی حالت میں وہ پھر دوبارہ کہے گا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اسی طرح یہ عمل 3 مہینوں میں ہوگا. اس دوران عورت اسی گھر میں رہ کے اپنا وقت گزارے گی. جب تیسری دفعہ وہ کہہ دے گا طلاق تو پھر وہ عورت اس پہ حلال نہیں ہوتی. یہ تو ہے ایک عام صورت, لیکن اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس سے عام لوگ واقف نہیں. وہ کیا ہے کہ پہلے مہینے میں اگر مرد کہہ دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں, پھر خاموش ہو گیا, پورا مہینہ گزر گیا, عورت پیریڈ سے پاک ہو گئی, دوسرا مہینہ بھی آ گیا, مرد نہیں کہتا, یا کہہ بھی دے, پہلی دفعہ بھی کہہ دے اور دوسری بھی کہہ دے سیم بات ہے, لیکن تیسرے مہینے میں مرد نہیں کچھ کہتا. تیسرا مہینہ ہوا, عورت پاک ہوئی, مرد کچھ نہیں بولتا, وہ ماں بھی گزر گیا. اب نتیجہ کیا ہوا, 3 ماہ گزر گئے, عدت کا عرصہ پورا ہوا. یا تو مرد نے ایک طلاق دی ہوئی, پہلے ماں دی, اور بعض وقت دو بھی دے دی, دوسرے ماں بھی دے دی, لیکن خاموش ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ عدت ختم ہوتے ہی ان دونوں میں سپریشن ہو جائے گی, طلاق ہو گئی لیکن وہ عورت اس گھر میں نہیں رہے گی, چلی جائے گی. لیکن اس کے بعد ایک دروازہ کھلا رہتا ہے, اور وہ کیا ہے, اگر 6 مہینے کے بعد اس مرد کو خیال آتا ہے کہ نہیں وہ اچھی تھی بیوی, رہ سکتی تھی, یا بیوی کو بھی لگتا ہے, جس طرح دوسرے مرد اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں, اس طرح پہلا شوہر بھی بھیج سکتا ہے. اب عورت کے ہاتھ میں, دوران عدت اگر مرد رجوع کرے تو عورت منع نہیں کر سکتی, پھر گیند جو ہے مرد کے ہاتھ میں. لیکن 3 ماہ گزر گئے, اب عورت اور عورت کے گھر والے اگر چاہیں تو اس کا رشتہ قبول کریں, تو اب نئے سرے سے نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کہیں بھی نوبت آ جائے تو ایسی ہی طلاق دینی چاہیے. اس صورت میں دوبارہ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں اور اس جگہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو طلاق حسنہ کہتے ہیں, اور اس کی دلیل میں نے یہ جو اتنی لمبی بات کی آپ کے ساتھ, اس کی آیت نوٹ کر لیں. جب آپ یہ بات سنیں گے تو بہت سارے لوگ دلیل مانگیں گے. آیت نمبر 232 میں اسی کا ذکر ہے. اور ایک صحابی تھے معقل بن یسار, ان کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. انہوں نے قسم کھا لی تھی میں نہیں کروں گا وہاں اپنی بہن کا نکاح, لیکن بعد میں پھر اجی آیت اتری تو انہوں نے نہ صرف وہاں کیا بلکہ اس پہ خوشی بھی ہوئی. آج بھی دیکھیے کتنے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں, جوش میں آ کے طلاق 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 کا لفظ بولا. مرغی کو بھی ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے, اور ایک عورت کو اس کے بسے بسائے گھر سے نکال کے باہر سڑک پہ کھڑا کر دو. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ پوچھ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو 3 ہو گئیں. تو بہرحال علم کی, یہاں مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے جو پیچھے تھی, کہ جب علم والے علم کو چھپاتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز اس پہ لعنت کرتی ہے. یہ لعنتیں ہیں, کل قیامت کے دن جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنے گھر پھر بس سکتے تھے جو صرف ہمارے فتووں کی اور غلط علم کی وجہ سے نہیں بسے. تو آج بھی دیکھیں وہ لوگ جو ایک ہی مہینے میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں کہہ کے گھر توڑ لیتے ہیں. 3 ماہ گزرنے کے بعد طلاق تو ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج بھی رجوع کے راستے کھولے ہیں, دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس کی بات ہم نے دیکھی. پھر دوسرا اس رکوع میں رضاعت کی باتیں تھیں. رضاعت کے بارے میں 6 باتیں ہم نے پڑھی. پہلی بات, 2 سال اس کی انتہائی مدت ہے, لڑکا ہو یا لڑکی. رضاعت تو آپ سمجھتے ہیں نا, بچے کو دودھ پلانا, بریسٹ فیڈنگ. 2 سال ہیں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے, اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے. اس سے کم پلانا ہو تو پلا سکتے ہیں, لیکن باہمی مشورے سے. دوسری چیز ہم نے دیکھی, اگر طلاق ہو جائے اور بچہ ماں کے پاس موجود ہے تو اس صورت میں ماں اس بچے کو دودھ پلائے گی, لیکن ماں اور بچے کا خرچ, کپڑا, کھانا وغیرہ وہ طلاق دینے والا مرد دے گا. دیکھیں کیا ہے حقوق, کیا اللہ تعالیٰ عورت کو شان دے رہا ہے. ہمارے ہاں تصور ہے اس چیز کا, طلاق کے بعد تحفے جا رہے ہیں, کھانے اور پینے, اس کی بات تو بعد میں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ عورت دوسری شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں اس بچے کو پلانا دودھ, یا کوئی اور وجہ ہے, تو پھر کسی اور عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے. تیسری چیز ہم نے پڑھی, عدت وفات. موت کی صورت میں جو عدت ہے اس کی مدت کیا ہے. 3 باتیں ہیں اس میں. نمبر 1, 4 ماہ اور 10 دن. دوسری بات, اس عدت کے دوران کوئی مرد اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا. खुल के नहीं। हाँ, तीसरी सूरत है, अगर किसी के दिल में ख्याल है कि इस औरत से इद्दत गुजरने के बाद मैं निकाह का पैगाम दूं, लेकिन अब अगर उसको बताता नहीं या उसके घर वालों तक उसका जिक्र नहीं करता और उम्मीद की जाती है कि उसका कहीं और हो जाए, तो इशारतन किनायतन जिक्र कर सकता है। मसलन कैसे, जैसे मेरा इरादा है अच्छी औरत से निकाह का, या किसी के अगर घर में बेटी है ऐसी तो उसके बारे में उसके माँ बाप से कह सकता है, अच्छा आप इसका रिश्ता करने से पहले मुझे पूछ लीजिएगा। इस तरह की मुफहम बातों की इजाज़त मौजूद है। और उसके बाद यह है कि इद्दत के दौरान निकाह भी नहीं होता। अगर इद्दत के बाद कोई निकाह कर लेता है इद्दत के दौरान, तो उस निकाह को फसख कराया जाएगा, और अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जायज़ औलाद नहीं समझी जाएगी। बाज़ उलमा तो इस पर इतने सख्ती पे हैं कि बाद में कभी भी इन दोनों का निकाह नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरी राय मौजूद है कि फिर अगर किसी ने ऐसा किया तो बाद में फिर उनका दोबारा निकाह किया जाएगा। हमारे लिए आज इस सबक में बात जो है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पिंच कर रही थी तर्जमा पढ़ते हुए, बार बार अल्लाह का डर, अल्लाह का डर, अल्लाह से डरो। अब देखिए क्या वाकई अपने आप को अगर तन्हाई में 5 मरतबा भी हम ये बात कह सके ना कि इत्ता किल्ला, अल्लाह से डर जा, खुद को सुनाने हैं ये लफ्ज, ताकि जिंदगी के हर मामले के अंदर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ जो है वो पैदा हो सके और फिर हम उसको अच्छी तरह से ले सके, और यही चीज फिर हमें आगे रोकेगी। चलिए अगली आयत में चलते हैं, आयत नंबर 236। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुम निसा, अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर मेहर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, हाँ इन्हें कुछ न कुछ फायदा जरूर दो, खुशहाल अपनी अंदाज से और तंग दस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फायदा दे, भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने इन्हें हाथ लगाया हो और तुमने इनका मेहर भी मुकर्रर कर दिया हो, तो मुकर्ररा मेहर का आधा मेहर दे दो, ये और बात है कि वो खुद माफ कर दें, या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ कर देना तकवा से बहुत ज्यादा नजदीक है। आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न किया करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। हाफिजु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो, बिलहसूस दरमियान की नमाज की, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े रहा करो, और अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी ही सही, सवार ही सही, हाँ जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियां साल भर तक फायदा उठाएं, इन्हें कोई ना निकाले, हाँ अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इस पर कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें, अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। वलिल मुतल्लकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, तल्लाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। ये था रुकू नंबर 15, इसका उन्वान था अहकामात और सलात, यानी दोनों का आपस में रब क्या है। इसमें हमने 4 चीजें देखी। नंबर 1 मेहर, मेहर क्या होता है, डौरी, यानी निकाह के वक्त मर्द एक खास रकम देने का इकरार करता है, इसको अरबी में सदुका कहते हैं, 5वें पारे में आप पढ़ेंगे। असल में मेहर औरत की कीमत नहीं है जैसा कि बाज लोग मुगालता देते हैं, बल्कि मेहर इस बात की सदाकत है कि मर्द आने वाले दिनों में इस औरत की जिम्मेदारियां उठाने में सच्चा है, यानी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है मर्द को कि आज के बाद इस औरत का नान नफका तुम्हारे जिम्मे है। 4 कैफियात मेहर की हमने इस रुकू में देखी। नंबर 1, किसी का निकाह हुआ उस वक्त मेहर का तायुन नहीं किया कितना होगा, और रुख्सती भी नहीं हुई, तलाक हो गई, अब क्या होगा, मुता दिया जाएगा, कुछ भी दे दे। मिसाल है निकाह के वक्त में तस्करा नहीं हुआ कि कितना मेहर दिया जाएगा, तो उस सूरत में बाज़ दफ़ा ऐसा है कि रुखसती से पहले तलाक हो जाती है, तो उस सूरत में जितना भी मर्द अपनी हैसियत से कम या ज्यादा देना चाहे दे सकता है। दूसरी सूरत हमने देखी कि मेहर मुकर्रर हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई, बाज लोग निकाह कर देते हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, बाद में कोई खराबी निकल आई, तलाक हो गई, रुखसती से पहले, इस सूरत में मर्द आधा मेहर देगा। यानी मिसाल अगर $100 मुकर्रर हुआ था तो $50 फिर वो उसको मेहर में देगा। तीसरी चीज हमने देखी कि मेहर मुकर्रर हुआ और रुखसती भी हुई, जैसे आम हालात होते हैं, चंद साल इकट्ठे रहे, चंद महीने, कुछ दिन, फिर दिल नहीं मिले, बात नहीं बनी, तलाक हुई, तो मर्द को पूरा मेहर औरत को देना पड़ेगा। यानी मेहर का मामला बहुत ही संजीदा है इसमें। और चौथी बात है कि मेहर मुकर्रर नहीं हुआ और रुखसती हो चुकी है, तो फिर इसमें मेहरे मिसल, मेहरे मिसल क्या होता है, उसकी खाला, फूफी, माँ, उस दौर में, उस मुआशरे में कितना रिवाज था उतना दिया जाएगा। बहरहाल ये मुख्तलिफ इस्तलाहात हैं जो हर दौर में, लेकिन बेहतरीन बात क्या है कि निकाह के वक्त में मेहर का तस्करा हो। तस्करा जरूरी है, अदायगी लाजिम नहीं, बाद में दे तो बाद में हो, लेकिन अगर औरत माफ खुशी से करे तो इजाजत है। अगर औरत माफ नहीं करती तो आपको मालूम है कि वो मर्द के जिम्मे कर्ज है। अगर मर्द मेहर अदा किए बगैर मर जाता है तो पहले उसके विरसे में से बीवी को बतौर कर्ज की तरह उसका मेहर की रकम दी जाएगी और फिर वो बाकी हिस्सा भी लेगी। फिर दूसरी चीज हमने इसमें नमाजों की बात पढ़ी, इसमें एक छोटी सी आयत गुजरी जो मनसूख है, वो क्या थी कि पहले इब्तदा में बेवा औरत की इद्दत 1 साल की थी, 1 साल तक उसको घर से नहीं निकाला जाता था, इस्लाम ने आसानी करके उस हुक्म को बदल दिया। और फिर नमाजों की बात हुई, आप एकदम सोचेंगे कि तलाक का मौजू है और आगे भी आ रही है बात, और बीच में नमाजों की बात क्यों आ गई, इसलिए कि ऐसे झगड़ों में सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं तो नमाजें होती हैं। सारी सारी रात मजलिसें बरपा होती हैं और फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कहाँ नहीं उठो, हाफिज़ वलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, क्योंकि दुनिया के सारे मामले एक तरफ और अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो दूसरी तरफ। हमारे लिए अमल की बात क्या है इसमें कि हमने अपनी नमाजों की निगहदाश्त करनी है, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर दुनिया का कोई मामला हमारा रास्ता उसमें नहीं रोक सकता। चलिए आखिरी रुकू है और इसके अगला रुकू अधूरा है, तो इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे बाद में। आयत नंबर 243 से रुकू नंबर 16, अलम तारा इल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है लेकिन अक्सर लोग ना शुक्रे हैं। सच है, अक्सर लोग हैं ना शुक्रे। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। मंजल्लजी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह इसे बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए, अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है, जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों न करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए, बच्चों से दूर कर दिए गए, फिर हम जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने इसी को तुम पर बरगजीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बर्तरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की जाहरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है, फरिश्ते इसे उठाकर लाएंगे, यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। ये तरकु नंबर 16, इसका उन्वान है तारीख बनी इसराइल में इबरत है। दो वाक्यात हमारे सामने आए, एक क्या था, खरूज बनी इसराइल मौत के डर से घर बार छोड़ के निकले, मौत का फैसला आ गया, अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। असल में यहाँ मुसलमानों को समझाया जा रहा है, आपको मालूम है कि ये आयतें मक्की दौर के आखिर में नाजिल हो रही हैं और अब मुसलमानों को सिखाया जा रहा है कि हिजरत के लिए तैयार हो जाओ, घर छोड़ने पड़े दीन के लिए तो छोड़ो, लिहाजा जंगें लड़नी पड़े तो लड़ो। और वो लोग जो हिचकिचा रहे थे उनके अंदर इससे जुर्रत पैदा हुई। फिर इसी में जिहाद के मनाते से कर्ज़े हसना की बात हुई, फी सबीलिल्लाह जितना दोगे उतना बढ़ जाएगा। और फिर ये भी बता दिया गया कि बनी इसराइल ने, एक और वाक्या है कि बादशाह के तलब करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उस नाते से हमने देखा कि पहली बात यह है कि किसी की लीडरशिप के अंदर काम करना ज्यादा बेहतर होता है अकेले काम करने से, टीम वर्क जिसको आप कह लीजिए। फिर दूसरी चीज हमने इसमें देखी कि अल्लाह ताला किसको चुनता है, इल्म और जिस्मानी पुख्तगी। अगर आपके पास इल्म नहीं तो भी अपना काम है, और अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं कि लोगों से अपनी बात मनवा सकें तो भी नाकाम है। बाज जगह बाज लोग इल्मी रास्ते में बहुत पुख्ता होते हैं लेकिन शख्सियत कमज़ोर होती है जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं होता, और बाज जगह शख्सियतें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन इल्म कम है। तो अगर हम में से किसी की ये ख्वाहिश है कि कल हम दीन के नाम पर कोई अच्छा काम करें तो उसमें ये दो चीज़ें बढ़ानी है, इल्म और अपनी शख्सियत को, मतलब अपनी जिस्मानी ताकतों को बढ़ाना है। फिर इसी तरह इसमें हमने ये देखा कि अल्लाह ताला के नाम पे निकलने वाले अगर थोड़े भी होंगे तो उनको अल्लाह ताला फिर भी फायदा देगा। अगला हिस्सा पूरा करते हैं, इसी रुकू के अंदर आते हैं और फिर आखिर में इस पूरे के ऊपर हम अपने अमल की बातें इंशाल्लाह खस करेंगे। आयत नंबर 249, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे आज तो हम में ताकत ही नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें, लेकिन अल्लाह पर की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी, क्या थी दुआ, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रं वसब्बित अक्दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए परवरदिगार हमें सबर दे, साबित कदमी दे और कौम काफिर पर हमारी मदद फरमा, आमीन। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूत के साथियों को शिकस्त दे दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकत और हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमा दिया। बस अगर अल्लाह बास लोगों को बास से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़े फजल और करम वाला है। तिल का आयातुल्लाह नतलूहा अलैक बिलहक व इन्नक लमिनल मुरसलीन, ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। ये था 17वां रुकू जिसका आधा हिस्सा अगले पारे में है। इसमें हमने क्या देखा, पहली बात उसी वाक्य में से कि बस दफा थोड़े लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें हमने देखी कि पानी कम पीने की जो बात की गई, प्यास को रोकना, इसकी हिकमत क्या थी कि जब इंसान का पेट बहुत ज्यादा भर जाता है तो बास दफा वो दीन के लिए काम करने के काबिल नहीं रहता। आपने देखा होगा कि आप खाली पेट होते हैं तो आप भाग लेते हैं, जो ही आप खाना खा लेते हैं तो आप चल भी नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह के दीन का काम करने वालों के पेट भी कुछ हल्के रहने चाहिए। और जब लोगों को अपने मिशन से प्यार होता है तो फिर वो ये नहीं देखते कि हमारे पास वक्त नहीं बचा खाना और पकाने का, बल्कि वो ये देखते हैं कि हमारी रूहानी गजा कितनी हमें ज्यादा मिली। फिर इसके अंदर हमने इस पूरे वाक्य में जो चीजें सीखी हैं वो बहुत सारी हैं। एक तो ये है कि कभी किसी को अपनी कसरत पे मान नहीं करना चाहिए। असल बात क्या है कि थोड़ा काम अच्छा भी होगा तो वो बहुत सारे फैले हुए काम पे फायदा देगा उस चीज के ऊपर इंसान को। फिर इसी तरह इस पूरे दोनों रुकू यानी 16 और अगले हिस्से से हमने क्या सीखा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आपके करने का काम क्या है इसमें, 5 बार अकेले में बैठ के खुद को ये कहना है कि मेरी जिंदगी और मेरी मौत का फैसला मेरे रब के हाथ में है। आपने सुबह शाम की दुआओं में कभी पढ़ा कितनी दफा जिक्र आता है, तो अगर आप उठने की सोने की देख रहे तो अल्लाहुम्म बिस्मी का अमूतु वाहया। फिर इसी तरह आप देखें सुबह की दुआओं में आता है अल्लाहुम्म इन्नी असबहतु, शाम की दुआओं में आता है अमसैतु। तो ये जीना और मरना जो है ये दिन में बार बार अल्लाह ताला हमें क्यों सिखाता है कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरी मौत आ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। फिर इसमें एक और चीज हमने देखी कि बास दफा अल्लाह ताला कौमों को आजमाता है। एक आजमाइश थी नहर से गुजरना, लेकिन उसमें खैर कितनी बड़ी मिली कि अल्लाह ताला ने उनको बचा दिया। आखिरी जुमला में आप सबकी आखिरी आयत, बल्कि आखिरी से पहली पे जरा पूरे पारे के रब से बात करना चाहूंगी। आपने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला बास लोगों को बास के जरिए हटा देता है। देखिए आयत नंबर 251 لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين। दोबारा इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ आपके सामने। अगर अल्लाह ताला बास लोगों को बास से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़े फजलो करम वाला है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला बास लोगों के जरिए बास को हटा देता है। पारे की इब्तिदा में क्या बात थी, तब्दीली किबला, और तब्दीली किबला क्या थी, एक उम्मत की तब्दीली। बनी इसराइल को हटा के मुसलमानों को दे दिया, यहां आखिर में क्या कह दिया, ये अल्लाह की आदत है, बाज लोगों की जगह बाज लोगों को लाता रहता है। रब समझ में आया आपको, वहां यहूद को हटा के मुसलमानों की बात थी, यहां कहा बाज को बाज से। हमारे लिए क्या दर्स है इसमें कि अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो अल्लाह और लोगों को लाएगा, वो हमारी जगह बैठ के बात करेंगे और हम हटा दिए जाएंगे। इसी तरह मैं हमेशा उन लोगों को कहती हूँ कि जो दीन सीखने के लिए आते हैं, अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी कुर्सियों पे दूसरे बैठ जाएंगे। कभी कोई ये ना सोचे कि मैं अल्लाह के दीन की जरूरत हूँ। अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं, हर बात जो करता है इंसान अपने ही लिए करता है। अल्लाह ताला की तौफीक से पारा पूरा हो गया। आज की आपको पेपर मिल चुका होगा, आप लोगों को भी हम देते हैं अभी इंशाल्लाह ताला। दो बुक तो मैंने आज की आपको बता दी तलाक के मौजू पे, और अगर किसी के बैग में ये मिसिंग हो तो आप फितनों के दौर में क्या करें वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज फितने के ऊपर भी काफी बात हुई थी। दूसरी आज की कमिटमेंट क्या है हमारी, कल वाली पूरी की है पहले ये बताएं, कितने लोगों ने इस पे अमल किया, सच्ची सच्ची बताइए क्या थी, आप में से कोई बताएगा मुझे। जी आप अख्तर, आप बताइए। नमाज पढ़ते वक्त गौर से तर्जमा करना, किस किस ने किया हाथ खड़े कीजिए, बाकियों की जरूरत नहीं थी कि भूल गए, नमाज पढ़ते वक्त गौर किया। मैंने तो शौरी तौर पे गौर किया और मुझे एक और तरह से मजा आया। अच्छा जी, पिछली हदीस पे गौर किया आपने, आज की हदीस आपके पेपर पे लिखी होगी, मैं सिर्फ एक दफा पढ़ दूं ताकि आप लोगों के सामने आ जाए। और आज ही हमने बात की है ना, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, तो अल्लाह के पसंदीदा बनना है। तो एक हदीस है आपके सामने, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ايمان بالله ثم صله الرحم ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر। महबूब तरीन आमाल अल्लाह के नज़र में क्या हैं? अल्लाह पर ईमान लाना, फिर उसके बाद सिला रहमी करना, और उसके बाद लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। हमने इन तीनों कामों की कोशिश करनी है। ठीक है जी, सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की दुआ भी आपके सामने होगी, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा, ए अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे दे। कल हमने किस चीज की दुआ मांगी थी? अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन। क्या मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला से? वो टूल्स मांग रहे हैं जो हमें हिकमत देंगे। अल्लाह ताला हमें वाकई तकवा दे। पूरी दुआ आप इसमें से देख के अपने लिए पढ़ेंगे और याद करेंगे। अल्लाह ताला हमने जो कुछ पढ़ा, जो इसमें गलतियां हुई उसको माफ कर दे, हमारी इसलाह फरमा दे, और आइंदा के लिए हम बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ सकें। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।